मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज सच पूछिए तो घटना के रूप में, समाचार के रूप में मेरे पास आप सब तक पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ है। और आज मैं आप सबसे मुख्य विषय के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पर बात करूंगा, और इसका संबंध है आपके प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से, यानी कि प्री एग्जामिनेशन के लिए आप किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे, उसका क्या रोल है। आइए इसे हम अलग अलग एंगल से देखने और समझने की कोशिश करते हैं, शायद ये आपके अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें कुछ काम आ सके। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में पिछले सप्ताह मैंने थोड़ी सी बातें आप सबसे की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में मौजूद होगा, और पॉलिटिकल साइंस एकमात्र ऐसा विषय है जिसका सिलेबस यूपीएससी ने इन डिटेल प्रोवाइड किया, हालांकि वो भी कंप्लीट नहीं है लेकिन विस्तार के साथ जरूर है। देखिए, वैसे भी यूपीएससी के जो सिलेबस होंगे वो कंप्लीट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप उसमें करंट अफेयर्स को शामिल कर देंगे तो वो तो अनजाना सा है, वो सफर ही अनजाना है, तो आप कंप्लीट सिलेबस तो प्रोवाइड कर ही नहीं दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो ढांचा प्रोवाइड किया है वो काफी कुछ स्पष्ट है और व्यापक है, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा सिलेबस। दूसरी बात कि पिछले कुछ सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्री के ही, प्री तक ही सीमित हम अपनी बात को रखेंगे, वे भी आपके दिमाग में होने चाहिए। इस रूप में नहीं कि आपको क्वेश्चंस याद हैं, कम से कम उनका आभास आपके मस्तिष्क के पास होना चाहिए कि अच्छा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छा इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छा यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, इन्हें आप केवल शब्दों का जंजाल मत मान लीजिएगा। अच्छा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तब तक आप उस तरीके की तैयारी कैसे करेंगे, मालूम होने चाहिए। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कहां कहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुछ तो चैप्टर ऐसे हुए जहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, यानी कि उनके आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि इसका टोटल वेटेज कितना है आपके प्री एग्जामिनेशन में। जैसे मान लीजिए कि अगर वेटेज बहुत कम है तो ठीक है, आप थोड़ी सी उसके बारे में लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है तो, और फिर भी आप अगर लिबर्टी ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और दोस्तों, जहां तक पॉलिटिकल साइंस का संबंध है, इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। मुख्य परीक्षा के बारे में मैं आप पिछले सप्ताह आपको बता चुका हूं कि तो पूरा कंप्लीट एक पेपर ही है, तो आप अगर प्री में चलिए इसकी थोड़ी सी उपेक्षा करके क्वालिफाई कर भी जाएंगे तो मेंस में क्या करेंगे, मेंस में अटक जाएंगे, बात तो नहीं बनी। इसका मतलब है कि आपको अपनी तरफ से कुछ सोचना ही नहीं है, इस पर बहुत अच्छी तैयारी करनी ही करनी है। और यहां तक कि जब आप प्री में इसके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे तो बकायदे आपके पास डेटा है, आप उन्हें देखिए। मैं अक्सर चार सब्जेक्ट को प्री एग्जामिनेशन के पिलर्स कहता हूं, मेंस के भी वो पिलर्स हैं लेकिन मेंस में चलिए थोड़े से और हो जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। ये मेन पिलर्स हैं, और अगर इन दोनों के क्वेश्चंस की संख्या को आप मिला देंगे तो कभी भी 60% से कम क्वेश्चंस इससे नहीं आए हैं। 60% मैं आपको कम साइड में बता रहा हूं, और मैक्सिमम तो 72% तक गए हैं। केवल इन चार विषयों से तैयारी हो जाती है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको ध्यान होगा। और अगर इन चारों में से भी हम प्रायोरिटी फिक्स करें तो आप पाएंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये दोनों लगभग लगभग पैरेलल से चलते हैं, और इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15-15 क्वेश्चंस का एटलीस्ट होता ही होता है, 15-15 और इससे ज्यादा भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, मैं बहुत ही लोअर साइड में आपको बता रहा हूं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा किससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता है। यूपीएससी इस बारे में आपसे कोई वायदा नहीं करती है। पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब है दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, पहली बात। अब मैं आता हूं किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए यह बात जानना सबसे जरूरी है, और इसके अनुसार तैयारी कर पाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए कि पॉलिटिकल साइंस की आपके पास समझ हो और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की आपके पास समझ हो, और इसके बाद जो उससे भी बड़ी बात है वो है कि पॉलिटी की आपके पास समझ हो। इसके बारे में भी मैंने पिछले सप्ताह बात की थी, उसे यहां मैं दोहराना जरूरी नहीं समझ रहा हूं। तो आइए देखें, एक मैं आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं जो बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी कि पिछले साल के प्री एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था, बहुत सरल सा है, लेकिन इसके चैलेंजेस को समझिए कि इस प्रश्न में चैलेंज कहां है, चुनौती कहां है। इतना आसान नहीं है कि आप बहुत सरल तरीके से इसे हल कर लेंगे। ब्यूरोक्रेसी पर प्रश्न पूछा गया है। ब्यूरोक्रेसी, देखिए जब भी ब्यूरोक्रेसी पर कोई प्रश्न आएगा तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आ सकता है, कभी नहीं पूछा गया है ब्यूरोक्रेसी को लेकर के टेक्निकल क्वेश्चन, और आप उसके हिस्से होने जा रहे हैं। तो यूपीएससी ये जानना चाहता है कि ब्यूरोक्रेसी की तैयारी आपकी कैसी है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो समझ होनी चाहिए इनफैक्ट वो किस तरीके की होनी चाहिए, इससे आपको ये अंदाजा लग सकेगा। और मैं तो ब्यूरोक्रेसी का यहां उदाहरण ले रहा हूं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के और भी जो दूसरे हिस्से हैं वो भी आपसे इसी तरह की समझ की अपेक्षा करते हैं, जिनके बारे में आगे चल करके यदि संभव हुआ तो हम लोग बातें करेंगे। देखिए मेरे पास डी सेट है जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूं, और उसका है क्वेश्चन नंबर 75। भारत के संदर्भ में, देखिए बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, जर्मनी के संदर्भ में नहीं। जर्मनी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा चिंतन हुआ है, विचार हुआ है, काफी कुछ लिखा गया है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है, राइट? अब आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको कहां दे रहा है। पहला तो चलिए भारत के संदर्भ में भारत की बात कर रहे हैं तो और स्वाभाविक है कि हम भारत के ही बारे में बात करेंगे। अगर उनको दूसरे देश के बारे में जरूरत होती तो वह यहां मेंशन करते इंग्लैंड के संदर्भ में या जिस देश के बारे में भी वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो भारत के बारे में ही पूछेंगे। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त, अब यहां देखें कि उन्होंने उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया है, उपयुक्त इंग्लिश में ही एप्रोप्रिएट। मजेदार बात यह है कि जब आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपको चारों उपयुक्त लगेंगे, मतलब नौकरशाही से जुड़े हुए ही ये हैं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए शब्द का प्रयोग किया गया है उपयुक्त, और चूंकि सीधे सीधे हैं, ए बी सी डी सीधे सीधे है, इसमें फिर अलग से कूट नहीं दिए हुए हैं, तो एक में ही आपको निशान लगाना है। अगर कूट दे देते तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता या आसान भी हो जाता अगर आपकी समझ अच्छी है तो। केवल एक ही पे निशान लगाना, ए बी सी डी। ध्यान से सुनिएगा, ए संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, अभिकरण का मतलब है एजेंसी, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, विस्तार देने वाला अभिकरण। बेहतर होगा कि आप इन सब के बारे में अलग अलग से सोचें भी कि क्या यह है नहीं है, इससे आपकी इस टॉपिक पर अच्छी तैयारी भी हो सकती है। बी संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, क्या ऐसा है? इन पर आप अलग अलग विचार कीजिएगा प्लीज। सी राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और डी है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये चार विकल्प दिए गए हैं, प्लीज आप इन चारों विकल्पों पर विचार करें नौकरशाही के संदर्भ में। अच्छा होगा अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इनके ऊपर एक एक दो दो पैराग्राफ लिखें। अगर आप उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो लिखें कि क्यों ऐसा नहीं है, और एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो लिखें कि क्यों ऐसा है, और फिर जो आप अपना आंसर इसमें से निकालेंगे उसके बारे में भी लिखें कि यही क्यों है, इन चारों में से यही एप्रोप्रिएट क्यों है, क्योंकि यही तो इसका चैलेंज है। तो अब आप देखें कि जब आप सरसरी निगाह से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत सरल और सहज सा ही नजर आएगा, और सच बात है कि ऐसा है भी, यानी कि आपको नजर आ रहा है तो आपके नजरों में कुछ खराबी है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप हल करने जाएंगे, विकल्पों को देखेंगे, तो धीरे धीरे अंदर से डगमगाने लगेंगे, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होना इसमें एक ही है। बस यही सबसे बड़ा इसका चैलेंज है, और केवल इसी प्रश्न का ही सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस का ही ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, कुछ प्रश्न स्ट्रेट भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न है वो शेड लिए हुए होते हैं, यानी कि एक अलग किस्म की छाया उनमें मौजूद रहती है, एक अलग किस्म की छवि मौजूद रहती है, जो स्ट्रेट, जो बिल्कुल सीधे सटीक शब्दों में व्यक्त नहीं होती। आपको उन्हें पकड़ना पड़ता है कि अच्छा इसका ये मतलब है, और पकड़ने के बाद फिर आपको उसे जो दूसरे विकल्प हैं उनसे तुलना करना होता है। इससे अगर ये बेहतर है तो क्यों है, या बदतर है तो क्यों है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिस पर मैं अभी बात कर रहा हूं, वो एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने का ही है। बेहतर होगा कि आप मेरी इस बात को जांचने के लिए जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसमें से पॉलिटिकल साइंस से जुड़े कुछ और प्रश्नों को पढ़ लें, है ना, मैं भी पढ़ करके आपको सुना सकता हूं, लेकिन ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पढ़ें और उनमें इस चैलेंज को ढूंढने की कोशिश करें जिस चैलेंज की मैं बात कर रहा हूं, वो चैलेंज आपको मिलेगा। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इस चैलेंज का हल तो आपको ढूंढना ही ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों आगे चल करके हम लोग इस पर और बात करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेट अस सी, शायद हम लोग ढूंढ लें। तो आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं मुकेश गुप्ता, प्रदीप सिंह ठाकुर, उत्कर्ष गर्ग, शशि सिंह, विवेक कुमार रघुवंशी, श्रुति सुमन बेगूसराय बिहार से, अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से, नेहा निधि, पूजा शाक्य गंगानगर से, और विकास कुमार गया बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।